Yali Madad, June 20, year 2004. My wife in North Jamadkhana of Vancouver in the morning after dua. इंसान के बदन में एक चीज है जिसको हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम स्पिरिट कहते हैं। ये रूह है, लाफानी है। दूसरी चीज है जिसको हम जीव कहते हैं, लाइफ फोर्स उसका मतलब है, उसको इंग्लिश में सोल कहते हैं, लेकिन हमारे ज्ञानों में उसको जीव कहा गया। ये रूह है, इंसानी है। इस वाइस के आखिर में जहाँ जिक्र आता है कि मौत के वक्त रूह मुख्तलिफ जगहों से निकलती है, तो उसका मतलब जीव है, रूह है इंसानी यानी सोल। तो ये ध्यान रख के अब वाइस सुने। धीरे धीरा सत केरी वाटड़िए वीरा भाई एलो चलो रे जीरे वीरा खटना हरा वीरा भाई खट गया रे दूजा खटन कोला। मौलाना हज़रत इमाम पर सलावत पढ़ो दिन हरो अल्लाहुम्म सल्लल्लाहु मोहम्मदन व आल मोहम्मद इला कयामा। सुबह का वक्त है, इस वक्त को हमारे पीरों ने नूर का वक्त कहा है। नूर का वक्त इसलिए कहा है कि इस वक्त जो आदमी खुदा को याद करते हैं, इस वक्त के अंदर दुनिया की कोई भी हरकत हिलचाल नहीं होती, महज और सिर्फ खुदा की मोहब्बत और उसकी शुक्रगुजारी में लोग सुबह उठ के इबादत करते हैं। मोमिनो, हमारा जो मजहब है, इस्लाम दीन का मगज है, ब्रेन है। जिस तरह सारा बदन अपने ब्रेन का मोहताज है, इस तरह से इस्लाम के अंदर जितने भी दूसरे फ़िरक़े हैं रूहानी नज़र से, वो इस्माइली मज़हब की अंदर इस्माइली जमातें जो दिन और रात को इबादत करते हैं उसके मोहताज हैं। इसलिए मोहताज हैं, हमारी ये जो सुबह की और शाम की जो इबादत है दीनदारों, वो मजहब को ताकत देती है। इस्लाम जिंदा है आले नबी औलाद अली के नूर की वजह से। इस्लाम का धनी, इस्लाम का मालिक वही है और उसकी हाजिरी अगरचे लोग नहीं जानते, मगर इस्माइलियों को मालूम है कि इमाम कौन है। इमाम का जो बदन है वो इंसान और खुदा के नूर के दरमियान एक लिंक है। अगर इमाम का बदन हमारे दरमियान न होवे, यानी कि इमाम जो हमें हिदायत करते हैं, फरमान करते हैं, कभी वो ना हो गए, तो हम कोई नबी या पैगंबर नहीं है कि हम खुदा ताला के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम इंसान हैं, इसलिए ज़रूरी है जिस तरह एक छोटा बच्चा बातचीत सीखने के लिए अपनी माँ का मोहताज है और शुरुआत के अंदर वो जो बच्चा है उसका टैलेंट इतना नहीं है कि वो सब लोगों की बातें समझ सके, तो माँ खुद मेंटली नीचे आ जाती है और बच्चे के साथ इस तरह कम्युनिकेट करती है कि वो बच्चा उस चीज को उठा सके। इसी तरह से हम इंसान जो हैं, हमारे अंदर इस कदर नूरानी ताकत या लुदूनी समझ नहीं है कि हम खुदा ताला के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सके। इसीलिए उसने 124,000 पैगंबर भेजे ताकि लोगों को उसकी हिदायत मिल सके। और इन पैगंबरों ने दुनिया के अंदर आके जो खुदा ताला ने जमाना का हिसाब देख के जो हिदायत करनी थी उसके मुताबिक, और इंसान जो जो कल्चरली और सिविलाइजेशन के हिसाब से तरक्की करता रहा उस हिसाब से नबियों ने इंसानों को हिदायत की। लेकिन जब ये खुदा का पैगाम पूरा हो गया और इंसान दुनिया की ज़रूरियात के हिसाब से, दुनिया की समझ के हिसाब से जैसा कि आज पूरा हो गया है, तो खुदा ताला ने अपनी पैगाम को बंद किया, इसलिए कि उसने जो सिखाना था वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरफ से सिखाया। और एक आखिरी चीज़ जो रह गई थी वो इमाम की शनाख्त थी। नबी की वफात के बाद कयामत तक इमाम मौजूद रहेगा और तुम्हें हिदायत देता रहेगा। खुदा का जो पैगाम आ गया उस पैगाम को पूरा करने के लिए इमामत की ज़रूरत रही। इसलिए आखिरी चीज़ ये थी कि हज़रत अली का हाथ पकड़ के खड़ा करके 125,000 आदमियों के दरमियान ये कह दिया कि ये तुम्हारा मौला है। और उसके बाद ही फौरन आखिरी आयत उतरी कुरान शरीफ की, अल्यौमा आज के दिन अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने तुम्हारे दीन को पूरा मुकम्मल संपूर्ण कर दिया। और खुदा ने कहा कि मुझको जो तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत भेजनी थी वो नेमत पूरी कर दी। वो नेमत क्या थी? दीन इस्लाम नेमत थी। इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ से शुरू नहीं हुआ बल्कि पूरा हुआ। और आज जो इस्लाम है वो हकीकतन वहां है कि जहां अली है, और अली जो है वो आज की दुनिया के अंदर मौलाना हाजर इमाम के रूप में अली मौजूद है। इस बाहर की चीज को, नूर की कॉन्सेप्ट को समझ के जो इस्माइली जानते हैं गैरों को मालूम नहीं। आप मुसलमानों से बात करो, उनके उनको नूर का नाम आता जरूर मगर नूर क्या चीज है उन्हें पता नहीं। हमारे यहां ये चीज मौजूद है, हमारे पीरों ने हमें ये चीज बताई कि नूर है जो वो तुम्हारे दरमियान मौजूद है। अब हज़रत इमाम हमारे सामने बैठा होवे, हम उसके बदन को देखते हैं क्योंकि हमारी जाहिर की जो आंखें हैं वो नूर को शनाख्त नहीं कर सकती। हमने महज हज़रत इमाम का जाहरी दीदार किया है। और जहां भी जाओ लोग ये कहते हैं, दुआ करो ना मौलाना हज़रत इमाम दीदार देने आवे। मुझे ताज्जुब होता है। ताज्जुब इसलिए होता है कि इस्माइली मज़हब के अंदर ज़ाहरी दीदार की हकीकत से ज्यादा बातूनी दीदार की है। ज़ाहरी दीदार अलबत्ता ज़रूरी है उन बच्चों के लिए कि जो बड़े हो रहे हैं। ज़ाहरी दीदार करने से ईमान बढ़ता है, ज़ाहरी दीदार करने से मोहब्बत बढ़ती है, ज़ाहरी दीदार करने से गुनाह मुआफ़ होते हैं, ज़ाहरी दीदार करने से दुआ आशीष मिलती है। लेकिन याद रखो दीनदारो, ज़ाहरी दीदार यही कोई हमारे मजहब की आखिरी चीज नहीं है। इससे ऊंची जो चीज है वो नूरानी दीदार है, और उसके लिए हमको उसने एक एपरेटस दिया है कि जिस तरह से एक दूरबीन है, एक माइल दो माइल की चीज हम नहीं देख सकते, लेकिन दूरबीन लगा के हम उसको देख सकते हैं। एक माइक्रोस्कोप है कि जो बैक्टीरिया को भी देख सकते हैं, हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसी तरह से हमें जब तक के हजर इमाम का नूरानी दीदार नसीब नहीं हुआ, तब तक हमारा ईमान कामिल नहीं है मोमिनों। इमाम के जाहिरी दीदार को एक लेडर बना के और उसके फरमान के ऊपर अमल करके, यानी लेडर के ऊपर चढ़ के हमें उस मंजिल पे पहुंचना है कि जहां वो हमारा माशूक हमारा एम रहता है। जब तक के हमें नूरानी दीदार नहीं हुआ, हमारा ईमान कामिल नहीं है, क्योंकि ईमान जब कामिल होता है तो इश्क पैदा होता है। जब तक के ईमान कामिल नहीं, इश्क नहीं, और जब तक के इश्क नहीं, तब तक माशूक अपना पर्दा नहीं खोलता, निकाब नहीं उठाता। नूरानी दीदार की ख्वाहिश करो, इच्छा करो, नूरानी दीदार की तलब करो, क्रेविंग करो उसकी। अपनी मौत से पहले हर इस्माइली के ऊपर ये उस मजहब की तरफ से फर्ज है कि अपनी मौत से पहले वो उस नूरानी दीदार की झलक देखे, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। और उपाय नहीं, तरण को ये तरण की बारी, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अफसोस यह है कि हम इस्माइलियों ने अपने मजहब को अच्छी तरह जाना ही नहीं। हमने अपने इस्माइली मजहब इस तरीके की जो हकीकत है और उसके अंदर जो नट है, हमने कभी वो खाया ही नहीं। हमको इस मगज के पता ही नहीं। हम जाहिरी तौर पे भी पूरी तरह नहीं बन सके। हमारे मजहब की जो जाहिरी चीजें हैं कि जो लेडर का काम करती हैं, मैंने अभी कहा कि जो जाहिरी चीजें हैं वो हमें ऊंचा उठाती हैं वहां पहुंचने के लिए। इस्माइली मजहब का ख्याल बहुत मुश्किल है। आओ मारा समीरा जा धर्मी राजा, तेरे नाम सोरे मरो मनड़ो बांधो। ए मौला, अपने नाम से मेरे मन को बांध ले। इसका मतलब यह है कि मैं वो चीज बिल्कुल ना सोचूं ना करूं कि जो तेरे नाम के साथ ताल्लुक नहीं रखती। उठना बैठना खाना पीना सोचना अमल करना सब चीज उसके नाम के साथ लगी होए तो मोहब्बत पैदा होए। उसका नाम अगर हर वक्त इंसान के कल्ब के अंदर अंदरूनी जबान के ऊपर रहे, ख्याल के अंदर, उस पर दूसरी चीज सूझे ही नहीं। सच पूछो, मैं माफी मांगता हूं आप लोगों से ये कहने के लिए कि हम इस मजहब के लायक नहीं हैं। इस हम के अंदर मैं भी साथ हूं। हम इस मजहब के लायक नहीं हैं, लेकिन हमारे ऊपर रहमत की गई है। और रहमत क्यों की गई, आज मैं आपको थोड़ा सा खुलासा देना चाहता हूं। दिन डरो क्यों रहमत की गई? हमारे गुण की वजह से, हमारी कोई अच्छाई की वजह से नहीं। मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं, उसके पहले एक छोटी सी हकीकत समझने के लिए एक मिसाल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। कोई चोर पकड़ा गया, पुलिस ने उसको लॉकअप में रख दिया। कानून ये कहता है कि इसको जितना जल्दी बन सके जज के सामने ले जाया जाए, एविडेंस हो जाए तो जज इसको पनिशमेंट देवे। लेकिन हुआ ये कि लॉकअप के अंदर बहुत टाइम निकल गया, या वो आदमी बीमार पड़ गया, कुछ भी हुआ, बहुत मुद्दत तक जज के पास पहुंच ना सका, वो रिमांड में ही रहा। आखिर जब जज के पास पहुंचा, एविडेंस देखे, जज ने कहा तुम्हें 6 महीने की सजा देनी चाहिए, लेकिन तुमने बहुत मुद्दत पुलिस के लॉकअप में ही निकाली है, इसके लिए अब तक जितनी सजा तुमने लॉकअप में निकाली इसी सजा को मैं कबूल करके तुम्हें फ्री करता हूं। यानी उसको सजा पूरी न मिली और यूं ही रहा। अब इस एग्जाम्पल को याद रखना, खुदा ताला ने क्रिएशन की, क्रिएशन की, और जैसे कि हम सुने हैं वाजों में या पढ़े हैं कि क्रिएशन सबसे पहले एक सिंगल स्पर्मेटोजा, जिसको सिंगल सेल कहते हैं, इस तरह से खुदा की क्रिएशन लाइफ के अंदर एक सिंगल सेल हुआ। ये मल्टीप्लाई हुआ, इवॉल्व हुआ, जिस तरह से हमें हमारे मौला ने, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने, हमारे पीरों ने हमें फरमाया है, तो इस तरह से हमारा जीव उस सिंगल स्पर्मेटोजा से निकल के कीड़े मकोड़े बनाए, इंसेक्ट्स में आया, इंसेक्ट्स में से निकल के थोड़े और जानवरों में आया, और ये डिफरेंट स्टेजेस में से हमारे पीरों ने कहा है 84 लाख स्टेजेस में से निकल के 8.4 मिलियन स्टेजेस में से निकल के, डिफरेंट स्पीशीज में से निकल के, कि जिसको लाखों बरस लगे, और पीरों के कहने के हिसाब से हमें लगभग 40 लाख बरस लगे। 40 लाख बरस हम इस दुनिया में हैं, 40 लाख बरसों से। इमाम फरमाया कीड़े मकोड़ों में से निकल के, समुद्र के जानवरों में, मच्छी वगैरह में से निकल के, एनिमल्स में से निकल के, बंदर में आए, बंदरों में से इवॉल्व होके अब तुम इंसान बने हो, इस सारे प्रोसेस को 40 लाख बरस बने। कुरान शरीफ के इशारे से हमें पीर सदरदीन माँ बाप कहते हैं कि 3 प्रकार के, 3 किस्म के जीव बने, खुदा ने उनको नहीं बनाया, वो खुद बने। खुदा ने हर स्टेज के ऊपर लाइफ की छोटी से छोटी जो स्टेज है, मोस्ट प्रिमिटिव स्टेज जो है, वो यही है, एक सिंगल सेल है बैक्टीरिया। हालांकि बैक्टीरिया जो है उसमें सिंगल सेल भी हैं और मल्टीपल सेल्स भी हैं। इनके अंदर बहुत ही माइन्यूट तरीके से खुदा ने थोड़ी सी समझ दी, बहुत माइन्यूट तरीके से। मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो मैं दो दिन में भी पूरा नहीं कर सकूंगा, मगर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो पत्थर है ना समुंदर में, जिसको हम कोरल कहते हैं, वो पत्थर है मगर उसमें लाइफ है, वो बढ़ता भी है मरता भी है। तो जहां लाइफ है, चाहे वो कितनी भी माइन्यूट लेवल में क्यों ना हो, उसके अंदर थोड़ा सा माइंड होता है। माइंड क्या है? किसी चीज को पसंद करना, किसी को ना पसंद करना। तो हम इन 40 लाख वर्षों में अपने माइंड के कारण से 3 ग्रुप्स में बट गए। पीर कहते हैं कि एक ग्रुप वो था कि जो बिल्कुल राइट पाथ पे चला, पास हो गया। दूसरा वो ग्रुप था कि जो थोड़ी भूल वगैरह भी की, पास ना हुआ ना पास हुआ, खुदा ने उनको वापस रिपीट करने का चांस दिया। तीसरा ग्रुप जो था, वो ग्रुप बिल्कुल माना ही नहीं, ऑपोजिट साइड में रहा, बिगड़ता रहा, उस ग्रुप को खुदा ने जेल में डाल दिया, डिटेंशन में डाल दिया, पड़े रहो यहां। और वो ग्रुप इवॉल्व नहीं हुआ, यूं ही पड़ा रहा। एक गिनान पिस सदर दिन और पिरसन का वीर दिन मां बाप का, दोनों ने इस बात का जिक्र किया है, हे जी अनंत ना मेला माथे उड़ताली सक्रोड़ ते बाप 47 ना लेखा नहीं पूछाना ये बीतई है तमें। अनंत काउंटलेस जीवों के अंदर से 48 करोड़ जीव यानी 480 मिलियंस उनको अकाउंट देना पड़ेगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। मैं आपको बहुत डीप ले जा रहा हूं और बराबर ध्यान से सुनना तो आपको रियली मजा आएगा समझने के लिए। काउंटलेस जीवों में से सिर्फ 480 मिलियन का अकाउंट होगा और उसमें से 3 करोड़ का मतलब 30 मिलियन उनका अकाउंट हो जाएगा, तो बाकी 450 मिलियन 45 करोड़ को छोड़ दिया जाएगा, उसका लेखा नहीं लेगा। मैंने जब पहली दफा ये गिनान समझ में आया तो मुझे परेशानी हुई। पाओ सीधा करो बेटा, डोंट स्ट्रेच योर लेग्स हियर, दिस इज जमात खाना। मुझे परेशानी हुई, फांफे मारने लगा, इधर से उधर गिनान पढ़ने लगा। 45 करोड़ का लेखा नहीं होगा, उन्होंने जो कुछ भी किया होगा वो कबूल कर लिया जाएगा, मगर तारे जाएंगे। बड़ा परेशान हुआ। कोई मिशनरी मेरी उस एज के अंदर 24-25 बरस की उम्र में, कोई मैंने मिशनरी, कोई भगत मैंने छोड़ा नहीं। और आखिर मैंने तय किया कि जब नेक्स्ट टाइम मौला आएंगे तो मैं मौला को पूछूंगा। लेकिन ये क्रेविंग मेरी मिटी नहीं। इमाम सुल्तान में बादशाह की 15वीं नजदीक आई और आ गए, मैं बड़ा खुश हुआ। सुबह जमात खाने से घर आया, बस मौला का थोड़ा याद करते करते मैं ऊंग गया, बैठे बैठे ऊंग आ गई, स्लंबर में चला गया। आधा जागता था आधा सोया था, देखता हूं तो जमात खाना है, एक भगत गिनान बोल रहे हैं, है जी पांच ना भूले आ साथ में आया, साथ न भूले आ नौ में आया, नौ न भूले आ बार में नहीं आया, उड़ता अनंत माली दू अवतार। मेरी जाग खुल गई, अरे जो जवाब मैं आज इतने वर्षों से मांग रहा था वो जवाब मिल गया। पांच ना भूलिया सात में आया, सात ना भूलिया नौ में आया, नौ ना भूलिया बार मां नहीं आया। अनंत मल्ली दो अवतार, अनंत 48 करोड़ सती जीव ने तर से कि जे देखी सर के नानी ध्यानी जे नारिदा मा अभी जल वसे, जे सत्य धर्म नियम दसवन सुकृत गुरुमुखे देतवा। इतनी क्वालिफिकेशन होवे तो वो अनंत में आवे। ओह, पहले युग में 17 लाख बरस का युग था, 17,28,000 बरस का पहला युग था। बस्ती बहुत कम थी, आदमी नहीं थे, हायर लेवल के एनिमल्स भी नहीं थे। उस वक्त 15 करोड़ जीव ऐसे थे। मैंने आपको पहले से कहा कि लाइफ के हर लेवल के ऊपर माइन्यूटेस्ट हालत में भी माइंड है, क्योंकि वहां जन्म और मरण की बात है, इसलिए इसके दरमियान माइंड होना चाहिए। तो ये जो जानवर है ना, वो भी इबादत करते हैं, दरख्त इबादत करते हैं, कीड़े मकोड़े इबादत करते हैं, खुदा को याद करते हैं, खुदा के फरमान में रहते हैं। लेकिन चूंकि अंदर इनमें माइंड भी है तो कहीं कहीं मैल फंक्शनिंग हो जाती है। कभी कभी एक झाड़ के पत्ते जो हैं, सब पत्ते हरे होते हैं लेकिन कुछ पत्ते मुड़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ये मैल फंक्शनिंग है। हर लेवल के ऊपर ये चीज बनती है। तो वो जमाने में कि जब कीड़े मकोड़े थे और लो लेवल के जानवर थे, ऐसे 15 करोड़ जीव थे, उसमें से पी सदरदीन कहते हैं कि पांच ना भूलिया साथ में आया, उसके तीन ग्रुप में पांच तरी गया, पास हो गए, पांच आवागमन में हुए, रिपीट किया, और पांच घोर अंधारी बन गए, डिटेंशन में चले गए। तो वो जो आवागमन में हुए उनको रिपीट करने के लिए सात में भेजा गया, 7 करोड़ी दूसरे युग में, 21 करोड़ हुए टोटल, उसमें 7 करोड़ 90 थे और बाकी के जो थे 15 करोड़, वो 90 थे और 7 करोड़ पुराने थे, 14 करोड़, सॉरी 1/3। तो 7 करोड़ में भी ऐसा ही तीन ग्रुप बने, पास हो गए, आवागमन में गए, रिपीट हुए और घोर अंधारी में चले गए, और वो 9 में आए। तो 9 के अंदर सात पुराने थे, 20 नवे थे, इनमें से 9 जो थे पास हो गए, 9 रिपीट हुए और 9 घोर अंधारी में चले गए। लेकिन फिर कहते हैं जो 9 रिपीट हुए वो 12 करोड़ में नहीं आए, अनंत में उनको चांस दिया गया। और पीर सदरदीन के लेखे के हिसाब से 36 करोड़ पूरा धर्मी श्री इस्लाम शाह ने भेजा, 10वें कारण जीव डोलाविया, 24 चालिया घोर अंधार, 12 पास हुए और यहाँ रिपीटिशन नहीं थी, 24 के 24 डिटेंशन में चले गए। अब हिसाब करो, 5 करोड़ घोर अंधारी, 7 करोड़ घोर अंधारी 12 करोड़ हुए, 9 करोड़ घोर अंधारी 21 करोड़ हुए और 24 करोड़ घोर अंधारी पिछले दिन के 45 करोड़ हुए। ये 45 करोड़ जो घोर अंधारी है कि जिन्होंने 4 युग की मार खाई, उन पर रहम करके पीर की तुफैल से रहम करके इस्माइली मजहब उनको मिला, ये वो 45 करोड़ कि जिनका लेखा नहीं होगा, यूं ही उनको बख्शीश के तौर पे पास कर दिया जाएगा। अब इस्माइली मजहब में आ गए, लेकिन लेखा नहीं होगा उसका मतलब ये नहीं है कि उनको नूरानी दीदार या नूर की बख्शीश मिलेगी। इस्माइली मजहब में आने के लिए लेखा नहीं हुआ। ये मैंने आपको इस्माइली मजहब की हकीकत इसलिए बयान की है कि ये समझाने के लिए कि हमारे ऊपर रहम करके इस्माइली मजहब दिया गया है। अब ये हमारे हाथ में है कि इस मजहब का मजा चखा जाए या यूं ही खुशबू ली जाए। खाना सामने है, सूंघो इसकी खुशबू आती है, महज खुशबू खाने के लिए और चीज है। हमने खुशबू सूंघी है, खाना खाया नहीं। खाने की लज्जत तब है कि जो सुबह आदमी उठे, इबादत करे, अपनी जिंदगी को ऐसा घड़े, झूठ न बोले, बदमाशी न करे, बदनजरी न करे, फरेब न करे, किसी का माल न खाए, निंदा न करे, पाक ख्यालात होवे, पाक विचार होवे, पाक अमल होवे, पाक अंदर होवे, पाक बाहर होवे, उसको नूर मिले, उसको नूर मिले। दीनदारो, नूर ऐसी चीज नहीं है कि झूठ बोलने वाले को पास आवे, नूर ऐसी चीज नहीं है कि फरेबी बदमाश को मिले, नूर तो पैगंबरों की हालत है। ये मजहब पैगंबरों का मजहब है, नबियों का दीन है जो हमें मिला है, और हमें इसलिए मिला है कि वो लॉकअप में रहा और मजिस्ट्रेट ने रहम खा के उसको नई सजा नहीं दी और कहा जा अब तक जितनी सजा भोग गया मैं कबूल कर लेता हूं। 4 युग हम मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, ठोकने खाते रहे, मार खाते रहे, हरदूत होते रहे, और आखिर जब पीर हसन कबीरदीन के जमाने में आए तो मौलाना इस्लाम शाह कहते हैं तू अपनी इबादत इनको दे। पीर हसन कबीरदीन को 48 करोड़ तारने के लिए अनंत करोड़ का वर दिया तो पीर हसन कबीरदीन रो पड़े कहते या मौला, इस कलयुग के अंदर, फड़तार वेला के अंदर बदिया बुराइयां बेहिसाब, पाप ही पाप होवे, ऐसी कंडीशन के अंदर ये अनंत करोड़ का तूने मुझे वर दिया, ये तो ऐसा हुआ कि लस्सी छाछ खट्टी हो गई, अब उसमें से मक्खन कहां से निकालूं। तब इस्लाम शाह माँ बाप ने कहा कि तुम अपनी बंदगी इनको दे। तो पीर हसन कबीरदीन ने 4 युग की अपनी बंदगी हमको दी। पीर हसन कबीरदीन ने अपनी बंदगी हमको मौला के कहने से दी और इस बंदगी के शुक्रगुजारी के अंदर हम लोग बरस में 2 रोजे रखते हैं जिसको हम बीज शुक्रवारी कहते हैं। ये बीज शुक्रवारी हम इसलिए रखते हैं कि पीर हसन कबीरदीन ने जो बंदगी मुझे बख्शी है, रहम करके बख्शी है, मौला के कहने से दी है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं कि इस मजहब में मुझे जन्म मिला। अब हमको इस लायक बनना चाहिए कि ये मजहब जो नबियों का मजहब है, जो पैगंबरों का दीन है, रसूलों का दीन है, फरिश्तों का दीन है, नूरी लोगों का दीन है, इसमें हम पैदा हुए हैं। खाओ पियो मजे करो, अच्छे मकान में रहो, मोटरों में फिरो, हिरो फिरो। हज़रत इमाम शाह करीम फरमाते हैं, बॉम्बे में फरमान करते वक्त सब कहते हैं कि एक आदमी है, उसका नाम समझ लो जाफर है। कारखाने हैं, माल दौलत है, बंगले हैं, मकान है, सब कुछ है, वो ये समझता है कि ये सब मेरे मेहनत से बना हुआ है। हाजिर इमाम कहते हैं, नहीं, तेरी मेहनत से नहीं बना। आज अगर हमको खुदा ताला ने दुनिया की दौलत दी है, दुनिया की सेहत दी है, इज्जत दी है, जो कुछ भी उसने मेहनत करके, जो कुछ भी उसने रहमत करके हमको दिया है दीनदारों, उसके अंदर हमें फखर और मगरूरी किस चीज की? अपनी हालत तो यह है कि चार युग हम हरदूद होते रहे, चार युग हम मार खाते रहे, चार युग जलील होते रहे, उसमें से रहमत करके हमको जब इस मजहब मिला है तो हमें इसका पता भी नहीं कि ये क्या चीज है। सोए रहो घर पे, जमात खाने आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास माल और दौलत बहुत है, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला कहता है, जिस दिन मैं बुलाऊंगा, तो जो मेरे मोमन होंगे उनके पास खूबसूरत हलीम हम्बल फरिश्ते जाके उसकी रूह कब्ज करेंगे। कुरान शरीफ की आयतों में से है, अल्लाह कहता है, लेकिन जो मेरे नाफरमान होंगे उनके पास जो फरिश्ते जाएंगे ना, वो भयानक फरिश्ते होंगे, डरावने होंगे। ऐ मोमिनो, मौत का वक्त है, वो बहुत सख्त वक्त है। ये डरावने फरिश्तों का, जब मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ते पढ़ते देखा तो मुझे याद आया, मौत के वक्त जो मोमन होते हैं उनकी जो रूह होती है वो इधर सिर में एक छोटा सा होल रहता है, जन्म के वक्त वहां से निकलती है। आला दर्जे के जो मोमन होते हैं, इससे जो कम दर्जे के होते हैं तो नाक में से उनकी रूह निकलती है, इससे जो कम नजरे होते हैं तो मुंह में से उनकी रूह निकलती है, इससे नीचे कानों में से रूह निकलती है। लेकिन नाफरमान बदमाश खराब पाखाना और पेशाब के रास्ते से उनकी रूह निकलती है, और जब रूह निकलती है तो पेशाब निकल जाता है, पाखाना निकल जाता है। वो वक्त आने वाला है, मुझे भयानक फरिश्ते लेने आएंगे कि मेरा पाखाना पेशाब निकल जाए, या मुझे खूबसूरत फरिश्ते लेने आवे कि मैं आराम से नाक या मुंह में से मैं निकल जाऊं, मक्खन में से बाल खींचा जाए। मोमन को पता भी नहीं लगता कि वो इस दुनिया से जा रहा है, यानी दुख नहीं होता। बैतुल ख्याल हमें वो एक बख्शीश दी गई है कि जिस बख्शीश से हम अपने 40 लाख बरस की जिंदगी के दुखों को भूल के मिटा दिया, मौला ने रहम किया, लेकिन अब हम ऊपर जाके उसके नूर तक पहुंचने का ख्याल करें। बैतुल ख्याल ये है। मौला आपको सुखी आबाद रखे, नेक उम्मीदें करे, तो पूरी तबीयत में मौलाना हज़र इमाम नूर की बख्शिश देवे, समझ देवे, इस पे अमल करने की तौफीक देवे। मौला आपको, आपकी आल औलाद को दिन दुनिया के अंदर अपने नूर के छतर छाया में रखे। सुखी आबाद।